अगला दौर मूसा की जिंदगी का फिर शुरू हुआ। वही साथ ही ना मूसल किताब और वल फुरकान अला लकुम तहतदून। और याद करो जब हमने मूसा को किताब और फैसला करने वाली किताब दी ताकि तुम हिदायत पाओ। इसको हाईलाइट कर लें। अगर सिर्फ इस एक आयत की रोशनी में भी कोई आपसे पूछ लेना कि कुरान के नजूल का मकसद क्या है, तो आपके सामने लिखा हुआ है लअल्लकुम तहतदून। इससे पता चलता है कि किताबें कौमों की हिदायत के लिए आती हैं, चूमने चाटने के लिए नहीं आती, तावीज़ बनाने के लिए नहीं आती, बेटियों की शादियों पे सरों पे गुजारने से नहीं आती। ये इस पे बात आगे होनी है, यहाँ सिर्फ इशारतन ये बात आई है, इसलिए इसको हम समझते हैं कि मूसा को तौरात जो दी गई थी उसके साथ उसका मकसद क्या था। हम अपने ऊपर लेके थोड़ा सा इस पे गौर कर लें, क्या आज हमें भी अल्लाह ने कोई किताब दी है? क्या आज हमारा कुरान अलफुरकान है? क्या हम इससे हिदायत ले रहे हैं? किसी चीज़ से हिदायत लेने के लिए क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। नहीं, अमल कैसे करेंगे जब समझेंगे ही नहीं? आपको यहाँ से मैनचेस्टर जाना है, आपने मैप निकाला स्पेनिश जुबान में, आप स्पेनिश जुबान समझते नहीं, क्या आप उसको फॉलो करके पहुँच जाएंगे मैनचेस्टर? नहीं पहुँचेंगे। तो पहली चीज़ किसी चीज़ से हिदायत लेने के लिए क्या है कि आप उसको समझें, फिर पढ़ें, फिर अमल करें। तो आज हम मुसलमानों का किताब के साथ जो हाल है उसको देख लीजिए। फुरकान हक और बातिल का फ़र्क करती है ये किताब। आपको फ़र्क महसूस हो रहा है? सही और बुरे का फ़र्क पता चलता है? तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही। सूरह फुरकान की पहली आयत में भी अल्लाह ने इस किताब को, कुरान को फुरकान कहा। इसी तरह यौमे बदर मुसलमानों के लिए यौमुल फुरकान है, क्योंकि उस दिन हक और बातिल फ़र्क हो गया था, तो लअल्लकुम तहतदून की बात हो गई। अब इसके बाद क्या होता है? अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि ये सारे मामलात हुए। अब दोबारा पीछे से उसी की तरफ इशारा हो रहा है जो उन्होंने बछड़ा पूजा था। मूसा अलैहिस्सलाम के आने पे मामला क्या हुआ? वइज़ क़ाला मूसा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ली कौमी ही, अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम। नोट करें, नबी अपनी कौम को छोड़ नहीं रहे गलत काम करने पे। समझाना फिर भी ज़रूरी है। इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम, बेशक तुमने जुल्म किया अपने नफ्सों पे, बित्तेहाज़िकुम अलेजला, बछड़े को बनाकर। क्या बनाया बछड़े को? ये नहीं लिखा हुआ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बित्तेहाज़िकुम अलेजला माबूदन, माबूद नहीं, यानी अल्लाह ताला ये बात ही नहीं कर रहे। तुमने बना लिया उसको माबूद तो बना दिया, बस तुमने बछड़ा बनाया, अब क्या करो? देखिए क्या किया इस कौम ने। नंबर एक शिर्क, नंबर दो नाशुक्री नेमत की, और नंबर तीन देखिए ये दीन से निकल गए, शिर्क करके दीन से निकल गए, मुर्तद हो गए। इसके बावजूद फतूबु इला बारीकुम, बस तौबा करो, पलट अपने बारी की तरफ। तरीका क्या है इनकी तौबा का? फक्तुलु अनफुसकुम, खुद को कत्ल करो। बज़ाहर क्या लगता है? खुदकुशी करो, लेकिन ये मतलब नहीं है। फक्तुलु अनफुसकुम से मुराद ये है कि जिन लोगों ने बछड़े को पूजा उनके रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को कत्ल कर दें। बड़ी बात है, इसमें बड़ी गहरी बात है, अगर हम इसका हक अदा कर सकें। और वो क्या है कि अपने रिश्तेदारों को शिर्क करता देखकर जो लोग चुप रहे, रहना नहीं चाहिए था उनको, अब उनको कत्ल होते देखना पड़ेगा। यही मंजर क़यामत के दिन बहुत सारे मुसलमानों को देखना पड़ेगा। अगर आज हम अपने रिश्तेदारों, अपनी दोस्तों, अपने ख़ानदान के लोगों को गलत काम करते देखें और ना जलें कूड़े, ना उनकी इसलाह की कोशिश करें, तो कल क़यामत के दिन इससे ज़्यादा ज़बरदस्त दिन देखना पड़ेगा। आज अगर अपनी औलादों को हम नहीं मना करते ना गलत कामों से, तो कल हो सकता है फिर उनको जहन्नम में जलता देखना पड़े। ज़ालिकुम खैरुल्लकुम इंदा बारीकुम, अल्लाह कह रही है तुम्हारे हक में बेहतर है। देखिए कत्ल होना बेहतर है, हाँ, ताकि इनका तज़किया हो, इनको पता चले। फताब अलैकुम, फिर वो पलट आया तुम पे। इन्नहु वत्तवाबुर रहीम, वो है ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान, रहम करने वाला। यानी उनकी तौबा का तरीका देखिए कितना सख्त था। आज कोई मुशरिक हो तो क्या उसको भी मारेंगे? नहीं, उम्मत मुस्लिमा में तौबा को बहुत आसान कर दिया गया, इसके बावजूद आज हम नहीं करते। किस तरह अल्लाह ताला कह रही है बेहतर है। अल्लाह का एक कानून नाफिज हो, यहाँ से इस्लामी हदों के लगने की तरफ भी इशारा है। अल्लाह का कानून जब किसी कौम पे नाफिज हुआ, तौरात का कानून नाफिज हुआ है ना इन पे, तो ये बेहतर है। आज लोग कह दें मुसलमानों को ये बड़े जालिम है, इस्लामी सजाएं बड़ी तकलीफ दे, तो ये लोगों की बात है। हमें इससे क्या पता चला कि अल्लाह ताला जब कौमों को किताब देता है तो किताब को पाने के बाद हक और बातिल का फ़र्क आना चाहिए, लोगों के दिलों में तकवा आना चाहिए। जिस कौम के अंदर फुरकान ख़त्म हो जाता है ना, वो बेमकसद बेकार चीज़ों में आ जाते हैं। कल वो बछड़े के आगे बैठे थे, आज मुसलमान कौम बेहुदा चीज़ों में टाइम ज़ाया करती है, खेल तमाशे देखने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेती है, ख्वाहिशों के पीछे चलती है। तो इनसे बचकर अपने आप को जब हम पाक करेंगे तो फिर अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह ताला इनकी गुस्ताखियों को यहाँ देख देखिए, ये असल में ऐसे जैसे आप एल्बम के सफ़े पलट रहे हैं, 40 साल तारीख को आप यूं पेज में, ये सफ़ा, इसलिए यहाँ डिटेल्स नहीं है, इसीलिए इस पर देर भी ज़्यादा लग रही है कि हर आयत के पीछे कुछ ना कुछ वाक़या चल रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, वइस कुल तुम या मूसा लन्नू मिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, और जब तुमने कहा है मूसा हम हरगिज़ आप पर ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि हम अल्लाह को देख लें कुल्लम कुल्ला, वही बात पीछे गुजर गई ना, जिक्र तकदीम और ताखीर है, ये कुरान का असलूब है। फ़ज़त को मुसायकत वन तुम तंजुरून, बस तुमको बिजली ने पकड़ा और तुम देख रहे थे। सुम्मा बस ना कुम इम्बादी मौती कुम लाल्लकुम तशकुरून, फिर अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद ज़िंदा किया ताकि तुम शुक्र करो। यहाँ क्या पता चल रहा है, वो 70 इनके बड़े बड़े आलिम जो थे जो दोबारा ज़िंदा कर दिए गए, उसके पीछे भी हिकमत थी, और वो क्या थी कि तुम अब अपनी इसलाह करो। मजहबी तबके को भी अल्लाह सुब्हान तआला बार बार मौके देता है ऐसी चीज़ों का कि तुम अपनी इसलाह कर लो, और ये कहाँ चुने थे, सूरत अलाराफ आयत 155 के लिए आप जगह छोड़े, तर्जमा आप खुद लिखिएगा, वहाँ पूरा जिक्र है इसका कि वख्तार मूसा 70 रजुलन लिमीकातिना, कि मूसा ने 70 लोग हमारी मुलाकात के लिए चुने, और यहाँ से ये अल्लाह ताला दिखा भी रहा था कि मरने के बाद ज़िंदा किए जाओगे। पता क्या चला कि जब कोई कौम ईमान और अखलाक के तकाज़ों को फरामोश कर देती है तो इसका अंजाम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह होता है। कल तो बर्क गिरी थी ना सायका की सूरत में, कहीं भूख और कहर साली है, आज के दौर में अल्लाह का कानून बदल गया, कहीं सैलाब, कहीं तूफान, कहीं सुनामी, अल्लाह ताला इस तरह अपनी नेमतों को लोगों के लिए तकलीफ की चीज़ बना देते हैं कि कौमें जब गुलामी के फंदे गले से नहीं उतार पाती तो फिर अल्लाह ताला उनको इस तरह बार बार लेके जाता है, और आज आप देख लीजिए कि उम्मत मुस्लिमा इसकी एक मुंह बोलती तस्वीर है। यहाँ तक दो वाक़यात कवर हुए हैं वादिय ती के, एक बछड़े को पूछने का और एक कोहे तूर पे जो उनके 70 सरदारों ने अपनी हैसियत से बड़ी हुई बात की। अब सिर्फ इशारतन अल्लाह ताला इसी 40 साल के अरसे में जो नेमतें थी उसमें से दो नेमतों का जिक्र करते हैं। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल ग़मम वअन्ज़ल्ना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, और ए बनी इसराइल फिरौन से निजात दिलाने के बाद हमने तुम पर बादलों का साया किया और मन और सलवा उतारा, और क्या कहा, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ ये पाकीज़ा चीज़ें जो हमने तुमको अता की। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून, इन्होंने हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि अपनी ही जानों पर जुल्म किया। है थे ये एक किस्म की पनिशमेंट के दौर में, लेकिन तरबियत थी। अब डेजर्ट था, सहरा था, ना बादल ना कुछ, अल्लाह ने आसमान पे एक बादल इनके लिए छोड़ दिया, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह, ये चलते तो वो बादल भी चलता, दिन को वो पूरा वक्त साया बनता, जब रात को ये कहीं रुकते तो उसमें से बल्ब बन जाते, लाइट चलती है। आजकल कोई ऐसा बल्ब कि आज हम पाकिस्तानी कितने भी बुरे हैं लेकिन इसके बावजूद देखिए हम पे अल्लाह के कितने इनाम आते हैं, कितनी ज़मीनें हमारी फसलें उगाती हैं और कितनी खैर उभरती है। तो पता क्या चलता है कि अल्लाह कौमों को नेमते देना नहीं छोड़ता, जैसे उसने आज तक हमें नहीं छोड़ी। और इसका किस्सा जो है खाओ मनो सलवा, ये कल कल से बाद अगले सबक में हम बहुत डिटेल से देखेंगे कि कौमें ना करती क्या है। इन्होंने मन क्या था, मीठी चीज़, मन जैसे एक गूंद होती है ना, लाइक आप कह लें मशरूम्स, इस तरह की मीठी खुम्बियाँ सी होती थी, सुबह जब ये उठते चारों तरफ इनके ऐसे मीठी चीज़ें होती, दरख्तों दरख्त तो बहुत है नहीं, यानी ऐसे बुलंदियों पे होती जैसे आप चुंगम कह लें आज के दौर में खुश होने के लिए, स्वीट थी। और सलवा के बर्ड्स, परिंदे यूं आके इनके पास बैठ जाते, बस इसको उठाते और ये बारबेक्यू करके खा लेते, क्या चाहिए था, स्वीट भी था मीठ भी था, लेकिन इन्होंने कहा हम नहीं खा सकते। अगले सबक में इस पे बहुत बात होगी और बहुत ही ज़्यादा हम मुसलमानों का अपना आईना दिखेगा कि कल उनको मनो सलवा मिला, कितने खुशकिस्मत है, हमें तो नहीं मिला ना कुछ। घर जाएंगे तो खाना तैयार है, सुबह आते हैं तो मियाँ साहब नाश्ता साथ दे देते हैं, इससे बड़े मन सलवा और क्या होंगे आपके पास, सोचिए आज हमारे पास कितना है। तो अल्लाह ने हमें भी बहुत नेमतें दी हैं, लेकिन ये बात है कि हमेशा दूसरे की नेमत याद नज़र आती है, अपनी नेमत नहीं दिखती। तो अल्लाह ताला ने इसका इशारतन जिक्र किया है, हम भी इधर इसको इशारतन करके आगे चलेंगे। मकसद इसमें नोट कर लीजिए, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ, खाना मना नहीं है, पाकीज़ा खाओ, अल्लाह के बंदे बनो, खाने के बाद ना शुक्रिया ना करो, इस्लाम खाने पीने से नहीं रोकता, नेमतों की ना कदरी ना करो, उसको खाकर अल्लाह की नाफरमानियां ना करो, अब यहाँ पे आप देखिए कि वो सफ़र पूरा होता है। 40 साल का सफ़र किस लिए था? वादिय तीह में से गुजर कर मुल्क शाम में जाने का। अब इनकी तरबियत हुई खूब, अल्लाह ताला ने इनकी मदद की। अब वो वक्त आ गया जब यूशे बिन नून के साथ इन्होंने मुल्क शाम में जाना है। वइस कुल नदखुलू हाज़िहिल क़रिया, और जब हमने इनसे कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। फ़कुलू मिनहा हैसु शिय्तुम रग़दन, खाओ इसमें से जितना चाहो। वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और दरवाजे से गुजरो तो सर झुकाए हुए गुजरना। वकूल हित्तातुन, और जुबानों पर हित्तातुन हित्तातुन कहना। करेंगे क्या? नग़फिर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, हम तुम्हारी ख़ताओं से दरगुजर करेंगे। यहाँ से समझिएगा थोड़ी सी बात कि जब बैतुल मक़दस फतह हुआ तो इस आयत में अल्लाह ताला फतह के आदाब सिखा रहा है, बल्कि अगर किसी को बुरा ना लगे तो जश्न आज़ादी मनाने का तरीका सिखा रहा है। ये लफ्ज़ जश्न इस्लाम का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन एक कौम को फतह मिली, एक मुल्क कॉन्कर कर लिया, इतने साल से कोशिश में थे। आप सोचे ना, बैतुल मक़दस की फतह के पीछे अगर 40 साल की हिस्ट्री और इधर 400 साल का रोना धोना है जो मिस्र में गुजरा, तो आज पाकिस्तान के लिए भी तो कितनी कितने साल की गुलामी पहले बरेस्गीर पाक को इनमें, और उसके बाद फिर वो एफर्ट्स जो पाकिस्तान हासिल करने के लिए की, हम क्या करते हैं उसके जवाब में? 14 अगस्त का जश्न, और नाच कूद के दिखाते हैं कि पाकिस्तान हमारा। वो कौमें जो तीर तलवार नहीं उठा सकती, कलम नहीं उठा सकती, वो तवसो रबाब भी तो उठाती हैं, तो वो मिली नगमे भी गाती हैं, तो नाच नाच के, और उनके जवान भी कौमी नगमे गाते हैं। ठीक है, दिल में ईमान पैदा होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको कहो कि अमली तौर पे इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हो, तो हम परेशान हो जाते हैं। समझ आइए, अल्लाह कहता है कि दाखिल हो कैसे, किसी बस्ती में जाओगे तो किस तरह? सुजदन, आजजी के साथ। यहाँ सजदे से मुराद पूरा सजदा नहीं है, आजजी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि जब आप किसी जगह फतह याब होके जाते तो आपकी सर मुबारक, आपकी दाढ़ी जो है ना, आपकी ऊँटनी के खुजावे से लगा होता, झुके हुए, कोई फख्र नहीं। जिस जंग में फतह होती, सारा लश्कर पहले जाता और अल्लाह के नबी आखिर में आते मदीना में, ये हाल है। और ज़ुबान पे इस्तग़फ़ार, खिता तुन के झाड़ दे, इसका लफ्ज़ी मानना होता है झाड़ दे, यानी हमारे गुनाहों को झाड़ दे। जैसे आज हम कहते हैं ना इस्तग़फ़िरुल्लाह, तो यहूदियों के लिए कलमा हित्ता था, हित्ता हित्ता। इस कौम को एक और बड़ी बुरी आदत थी, और वो क्या कि नाम बदलने की, लफ्ज़ बिगाड़ते थे। हित्ता को इन्होंने कर दिया खिंता, खिंता कहते हैं दाने को, बाली, ग्रेन, वीट। दिमाग में सवार ये था कि हमें अब ज़मीन से उगने वाला कुछ चाहिए, क्योंकि मन सलवा खा के थक गए, अगले सबक में बात होगी। अल्लाह कहते हैं कि हमने तुमको निकाला और तुम वहाँ गए, और अब मुहसिनों को ज़्यादा देंगे। लेकिन फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम, बस बदल दी उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया बात, सिवाय उसके जो उनको कही गई थी। क्या थी बात, कहो क्या? हित्तातुन, मतलब क्या था? ए अल्लाह हमारे गुनाह झाड़ दे। इन्होंने मजाक बना लिया, खिंतातुन खिंतातुन, दाना बाली बाली। अल्लाह कहते फ़ंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्ज़ं मिनस्समाई बिमा कानू यफ़सकून यफ़सकून, इन ज़ालिमों ने बात बदल दी जो इनको कही गई थी, तो आसमान से हमने इन पर रिज़्ज़ भेजा। रिज़्ज़ क्या? ऐसा अजाब जिसको सुनकर घिन आए। एक लफ्ज़ होता है रिज़्ज़, नापाक, सीन है तो नापाक है, तो रिज़्ज़ अजाब है, कराहत वाला अजाब। कहते हैं कि ताउन की बीमारी फैल गई, और इस तरह इनकी हालत हो गई कि लोगों को इनके ऊपर तरस आने की बजाय इनके ऊपर रहम आता है। क्या रवैये समझ आ रहे हैं कौमों के, बार बार एक ही कहानी, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी मदद कभी नुकसान कभी कुछ, यानी इस तरह ये कौम भटकती भटकती यहाँ पहुँच गई कि अल्लाह ने इनको मुल्क शाम दिया। यहाँ आके इन्होंने क्या किया, आपको अगले सबक से पहले सुनाऊंगी कि बैतुल मक़दस जब फतह हुआ तो उसके आगे क्या हुआ। लेकिन सब हम अपने दामन में झांके, आज हम दूसरों को अपनी बर्बादियों और अपनी तबाहियों का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो हमारे अपने काम कुछ गलत नहीं है, कुछ काम हमारे उनसे मुख्तलिफ नहीं। नबी सल्लम ने फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा, तुम अपने पिछलों के कदमों पे यूं चलोगे कि उनके जूते पे अपना जूता रखोगे, जो वो करते हैं तुम भी वही करोगे, हत्ता कि उनमें से कोई खू एक जानवर होता है उसकी बिल में घुसेगा ना, तो तुम भी घुस जाओगे। एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि अगर उनमें से कोई अपनी माँ के साथ जिना करेगा ना, तो तुम भी अपनी माँ से जिना करोगे। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, इससे मुराद यहूद और नसारा है? तो आपने कहा, और नहीं तो कौन? क्या उम्मत मुस्लिमा देखिए भेड़ चाल है। हम सब के लिए इस पूरे सबक में खुलासा क्या मिलता है कि जब अफराद और कौमों को अल्लाह ताला फतह और नुसरत से हमकिनार करे। तो किसी तकब्बुर और गरूर को करीब नहीं आने देना चाहिए। एज्ज इनकिसारी से अल्लाह के आगे झुके। 14 अगस्त को आप सारी रात अल्लाह से रो के दुआएं मांगें, नफिल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। पाकिस्तान की कामयाबी और उसकी फलाह व बहबूद के लिए दिन रातों को अल्लाह से दुआएं करें और दिन में कोशिश करें। छोड़ें सारी सियासत को, पहले इल्म सीखें, पहले देखें कि आपको अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत दी है। आप जब देखें, मूसा जब वहाँ आ गए तो सबसे पहला काम क्या था, किताब लेने के। पाकिस्तान जब बना था ना 14 अगस्त को 1947, उस वक्त पहला करने का काम ही ये था कि चंद लोग हैं वो काम संभाले और पूरी उम्मत को किताब से जोड़ दे। आज हालात फर्क होते, कितनी जानी माली कुर्बानियाँ। उस वक्त हम क्या बोलते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या। लेकिन आज तक बताइए, क्या हमने वो कब्रें भी तोड़ी जो शिर्क के माजगा बनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी अमल किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उसका अगला हिस्सा है। अल्लाह के नबी ने जब मक्का फतह किया था, सबसे पहले आपने हज़रत अली और उनके साथ एक सहाबी को भेजा कि मक्का के इर्द गिर्द जितनी ऊंची कब्रें उनको सब बराबर कर दो, बुत तोड़ दो, इनकी दरगाहें तोड़ दो। जब तक शिर्क के आसार नहीं ख़त्म होंगे, आप किस इस्लाम की बात करेंगे। तो अल्लाह ताला हम सब की मदद करें। ये था आज का सबक। आप ये ना सोचिए कि आखिर में सबक जल्दी हुआ, क्योंकि इन सारे वाक़यात को हमने पीछे किया हुआ है। और वही बात है कि डॉक्टर को पता होता है कौन सी दवा कब देनी है। ये जितनी बातें आज आखिर में जल्दी में आई हैं, अगले 2-3 सबकों में इन सब के ऊपर दोबारा बात होनी है। जिस पे आगे बात नहीं होनी थी वो शुरू में हो गई है। चलिए आप लोग इधर से आप शेयर करिए। आसिफ, आपने क्या सीखा?
मैंने आज सीखा कि पीपल प्लीजर नहीं बनना, बल्कि क्योंकि आखिरत में कोई भी मेरी सिफारिश नहीं कर सकेगा। जो भी अमाल करने हैं खुद करने हैं, लोगों को के दिखावे के लिए नहीं करना।
बिल्कुल, लोगों के दिखावे से ज़्यादा अल्लाह को दिखाने की कोशिश करनी है। आप देखिए कि एक अच्छा शाहकार बनाने वाला होता है ना, जैसे लोग पेंटिंग्स बनाते हैं, तो किसी को भी ये सोचिए कि जो एग्ज़िबिशन करने वाले लोग होते हैं वो अपनी चीज़ें पहले छुपा के रखते हैं, ताकि जिस दिन एग्ज़िबिशन होगी उस दिन हमारी सब चीज़ें खुल के आएँ। इस दुनिया में आप सोचें कि हम सब अपने अच्छे कामों को छुपा लें, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एग्ज़िबिशन करके आपके सारे मामले खोल के दिखा देगा, और फिर कोई बंदा आपसे उस वक़्त आपकी नेमत छीन नहीं सकेगा और हसद नहीं कर सकेगा। इधर से जी फरहत, आप शेयर कीजिए।
मुझे जो सबसे ज्यादा टचिंग बात लगी, जब आपने बताया इधर हम के जज्बे माल पड़ जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जज्बे अभी से सर पड़ने लगे हैं, जो रिश्ते हैं उन लोगों के लिए, कि कोई किसी की कमी नहीं आएगा।
बहुत अच्छा आपका एनालिसिस है माशाल्लाह, कि क़यामत के दिन तो रहम के जज्बे मान पड़ेंगे। इनको लग रहा है कि कुरान पढ़ने के बाद अभी मेरे जज्बे रहम के मान पड़ रहे हैं कि मैं अपने बच्चों और अपनी फैमिलीज़ के अंदर गलत चीज़ों को देखकर अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रही। वेरी गुड माशाल्लाह, एक्सीलेंट। इधर से पीछे से शेयर करें कोई। जी हाजरा, आप शेयर कीजिए।
मैंने बस यही सीखा है कि सब्र और शुक्र वो ज़िंदगी है, कि अगर जब शुक्र करना पड़े तो शुक्र करो, हर हाल में शुक्र करो, जो सब्र भी हो तब भी शुक्र करो। और जो दो किस्में हैं सब्र की, एक जो फोर्स में नहीं होते और स्ट्रेस होता है, तो उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
देखिए कि दुख के दिनों में तो हमें खुद भी पता हो रहा होता है ना कि हमें सब्र करना है। जब ज़िंदगी में कोई नेमत मिले ना, वो बहुत है। आपके ऊपर कैसे इसको लें, कोर्स कर रहे हैं ना अभी, आम हालात है तो कर रहे हैं, ये कौन सा सब्र है? ये आपका इस्तरारी सब्र है। कोई नेमत आ गई इसके बीच में, फिर देखेंगे कौन सब्र करता है, ठीक है। हालात बदल जाते हैं तो नेमतें भी फिर हम बदलने लगते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.